संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंदिर देव द्वारा रचित उसका अधिकार आरम्भ करना है। प्रशिक्षण से उसमें पुण्य पाप अधिकार अपन ने समाप्त कर लिया था, तो उसके आगे की ये गाथाएं हैं, तो उसी क्रम में इसे अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की कहानी क्या है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले और आत्मा के संयोग में रहने वाले वर्णादि से लेकर गुणस्थाना तक जो 29 प्रकार के भाव हैं, जिन्हें संक्षिप्त में आचार्य अमृतचंद वर्णादि और रागादि के रूप में कहते हैं। वर्णा सर्वे भाव भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। इतनी बात समय सार के जीवाजीवाधिकार में माने शुरू से लेकर 68 गाथा में ये बात समझाई है। यदि 68 गाथा को दो लाइन में कहना हो तो हम इतना कह सकते हैं कि भगवान आत्मा वर्णादि और रागादि भावों से अत्यंत भिन्न है, न तो उन रूप है और न ये भाव उसके हैं। न उन रूप है माने उनसे इसका एकत्व तो नहीं है, और न ये किसी के हैं न उसके ये हैं, इसका मतलब है इनका स्वामित्व तो भी उसका नहीं है। माने पूरे जीवाजीवाधिकार में इन 29 प्रकार के भावों से माने वर्णादि और रागादि से आत्मा का एकत्व और ममत्व छुड़ाया है। इतनी बात हमारे ख्याल में आ जाए तो समझ लो हमारे लिए जीवाजीवाधिकार समझ में आ गया। पूरे समय सार का पाठ 10 मिनट में किया जा सकता है। आप कहेंगे 415 गाथाएं 10 मिनट में कैसे बोली जा सकती है, बात बोलने की किसने कही। जब हमारे श्रुत ज्ञानी स्वधर्मानी इंद्र भी द्वादश अंक का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं तो क्या वे सब गाथाएं बोल के करते होंगे। उनकी पूरी विषय वस्तु अपने ज्ञान में घूम जाए, बस यही उसका असली पाठ है। तो जीवाजीवाधिकार में क्या कहा है, ये विषय वस्तु हमारे ज्ञान में घूम जाए, एक मिनट में दो मिनट में दो काम हो गया। फिर कर्ता कर्म अधिकार में वो कहते हैं इन्हीं 29 प्रकार के भावों में का ये भगवान आत्मा न करता है न भोगता है। तो इस तरह से 144 गाथा तक में ये बात बताई कि यह आत्मा वर्णादि और रागादि से न रागिन रूप है, न इनका स्वामी है और न इनका कर्ता भोगता है। अभी जीवाजीव के सार के रूप में मैंने अमृतचंद की एक पंक्ति प्रस्तुत की थी कि वर्णा द्यावा राग मोहा दयोबा सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा अस्य पुंसा पुंसा माने भगवान आत्मा। ये नपुंसक बोलते हैं ना, वो पुंस शब्द वो ही है। जिसने भगवान आत्मा को नहीं जाना नहीं पहचाना, उसमें अपनापन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, वो मुक्ति के मार्ग में चलने में नपुंसक है। मुक्ति अपना ये मर्यादा रखना, दुनियादारी की बात नहीं है। दुनियादारी में बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो जाए। आचार्य देव ने स्वयं कहा है क्लीबत्ते उपास माना, यदि उसे नपुंसक कहे और कोई कहे उसकी मेडिकल टेस्ट करा लो, वो मेडिकल टेस्ट वाला नपुंसक की बात नहीं है। इस भगवान आत्मा के सन्मुख होने के पुरुषार्थ की बात है। और कर्ता कर्म अधिकार के भाव के लिए मैं पंडित दौलत राम जी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वरुणादि यर रागादि से निज भाव को न्यारा किया। करना मरना की बात नहीं है, वास्तव में तो जानने की बात है। इससे न्यारा जाना बात इतनी, समय साल में तो जानने ही जानने की बात है, कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। फिर किया का प्रयोग क्यों किया, जाना ही कह देते ना, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए था कि कर्ता भोक्ता नहीं है। एक कर्ता कर्म अधिकार का सार बताना था तो जानने को भी न्यारा किया की भाषा में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। जाना भी कह सकते थे क्या? तो इस तरह जीवा जीवाधिकार और कर्ताकर्म अधिकार में सभी प्रकार के जो वर्णादि और रागादि भाव हैं, जिनमें संयोग और संयोगी भाव सभी आ जाते हैं। ये संयोग क्या चीज है कि अघातिया कर्म के उदय से जिनका हमारे साथ संयोग होता है उन संयोग उनको संयोग बोलते हैं। मान सीधी सच्ची बात है कि संयोगों में अघातिया कर्म का उदय निमित्त है, और ये मोहादि है ना, रागादि, ये क्या है कि जिनमें घातिया कर्मों का उदय निमित्त हो वे रागादि हैं, जिनमें अघातिया कर्म का उदय निमित्त है वे वर्णादि हैं, और जिनमें घातिया कर्म का उदय है वे रागादि हैं। सब कर्म निपट गए आठवीं माने कर्मों कर्मज जो भाव हैं, कर्म से उत्पन्न हुए जो भाव हैं, उनसे हमें अपने आत्मा को अलग जाना है, जानना है। क्योंकि जो चीज हमारे किसी पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं मिली हमको, उसमें हमारा एकत्व तो नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि रुपया पैसा स्त्री है तो हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म के समय मिला, मकान भी मिला, लेकिन ये हिंदुस्तान जैसा देश, इसमें एकत्व बुद्धि भी तो मिथ्यात्व है। इससे तो हमारे कर्म के उदय का कोई संबंध नहीं है। कहे अरे कैसी बात करते हो, यदि इराक में पैदा हो गए होते तो कभी के मर गए होते अमेरिका की बमबारी में, और अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो क्या हालत होती, और दुबई चले गए होते वहां मंदिर बनाना तो बहुत दूर, एक शास्त्र रखना भी मुश्किल है, एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो आपकी तलाशी ली जाती है। तो एक किताब जो आपके स्वाध्याय के लिए, जैसे हिंदू गीता ले जा सकता है तो मुसलमान कुरान ले जा सकता है, ईसाई बाइबल ले जा सकता है। आप भी कह दोगे हमारी एक समय साल है, कोई तत्वासूत कह देगा ले जा सकते हो, बस ज्यादा उन देशों में जाके पैदा हो जाते क्यों, और नहीं भाई पैदा वैसे ही चले जाते। तो ये अब समझ में आएगा कि भारतवर्ष भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिला है। ये राजस्थान में हम हुए तो ये भी पुण्य कर्म के उदय से मिला है। क्यों यूपी के किसी गांव में पैदा हो जाते तो क्या दुर्दशा हो जाती, वहां बिहार में पैदा हो जाते तो भगवान महावीर की भूमि है वैसे तो, क्यों साहब जितनी शांति यहां है वहां नहीं है। और जयपुर में मैं तो कल बताया था, जयपुर में सबसे ज्यादा शांत है। इंदिरा गांधी मरी थी, सारे देश में हजारों ट्रक जला दिए गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, जयपुर में पत्ता भी नहीं हिला था। चाहे राजनीतिक कोई घटना घटे, चाहे सामाजिक कोई घटना घटे, हमारे विरुद्ध जितनी बमबार्डिंग जयपुर में हुई थी लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तो हमारे पुण्य के उदय से नहीं मिला, क्यों बोलो विनय बाबू, तुम्हें जन्म से मिला, हमें पुरुषार्थ से मिला, बुद्धिपूर्वक मिला, इतना ही तो अंतर है। क्यों मिला तो है ना, बिना पुण्य कर्म के उदय के तो नहीं मिल सकता था। ये सारे संयोग ध्यान से सुनना, और जितने विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वे और जो क्षयोपशम भाव हैं वे, ये सब हमें घातिया कर्मों के उदय आदि क्षयोपशम आदि में प्राप्त हुए हैं। आचार्य देव ने बहुत डंके की चोट घोषणा की कि सात कर्मों का उदय तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ नहीं सकता माने तुम्हें निर्धन बना सकता है, कोड़ी बना सकता है, लेकिन इसमें आत्मा का क्या बिगड़ा, यानी भविष्य में कर्म बंध में वो निमित्त नहीं बनेगा। क्या जब तक तुम राग द्वेष नहीं करोगे, और राग द्वेष जब तुम करोगे उसमें घाटिया कर्म निमित्त है, क्यों उसमें अकेला मोहिनी कर्म निमित्त है, तो सात को क्यों शत्रु माने बैठे हो जबरदस्ती, इन सात की छुट्टी करो पहले। ये उदय में आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, कम ज्यादा सहयोगसम होगा, क्यों और उदय में आकर इनके कारण भविष्य में बंधन नहीं होगा। ये सात कर्म निसंतान ही मरते हैं, बस उनका वो अंत आ गया और बिना कुछ किए अंत आ जाएगा। अरहंत भगवान भी जिन अघातिया कर्मों के नाश के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ समय का इंतजार करते हैं कि अपने आप समय पर हो जाएंगे, क्यों हम उन अघातिया कर्मों के फेरफार में सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें अरहंत भगवान भी कुछ नहीं करते, कर नहीं सकते। संयोग तो उदयाधीन है, देखा ना टोटरमल जी ने, उसमें हम कोई फेरफार नहीं कर सकते, पर हमारे जितने भी प्रयोग हैं जीवन में अभी भी पुण्य के प्रति भी हमारी जितनी जो आकांक्षा है वो सब इन संयोगों की अनुकूलता बनाए रखने के लिए ही है, क्यों लेकिन इसमें लंच मात्र भी हमारा और आपका इस भव के किसी पुरुषार्थ से नहीं चल सकता। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, समझे ना, ये बिल्कुल अफर है, इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। पर हम मान लो कि ये जो संयोग है उनमें भी अब गोत्र कर्म में हम जो पैदा हो गए हैं जिस गोत्र में, तो हो ही गए, हम ज्यादा माथा नहीं मारते उसमें, क्यों कभी कभी तो उल्टा करते हैं, हमें अभी स्वाभिमान है कि हम जैन कुल में पैदा हुए, पर वो अर्जुन भी कहता हमें स्वाभिमान है कि हम इस कुल में पैदा हुए, नहीं तो हमको थर्ड डिवीजन होने पर भी कलेक्टरी कैसे मिलती, क्यों है कि नहीं। मेरा मतलब कहने का अर्थ है आप उसमें गौरव मान सकते हैं, अपना दुर्भाग्य मान सकते हैं, लेकिन फलता फलती आप भी कहते हैं हम इस भ्रम में कर सकते हैं, ऊंच गोत्र नीच गोत्र में, यदि नामकर्म में भी जैसा काला गोरा शरीर मिल गया है, क्यों खाते होंगे कुछ केसर मेसर गोरा बनने के लिए, लेकिन 90% लोग तो उसके बारे में फिर एक दफा स्वीकार कर लेते हैं और झगड़ा खत्म, क्यों जैसा भी हमारा नाका नाक छोटी होगी बड़ी होगी तो मान लेते हैं चुपचाप। नामकर्म के उदय में भी हमारी यही पोजिशन है, गोत्र नाम और वेदनी आयु, और आयु कर्म में भी अब आयु कर्म और वेदनी इन दो में ही हमारा सारा प्रयत्न चलता है, क्यों आयु कर्म हमारा थोड़ा बढ़ जाए, क्यों अधिक से अधिक जिए, और दूसरी कि ये साता वेदनी का उदय रहे, असाता का नहीं रहे। 99% तो वेदनी कर्म है जो बिल्कुल ही जीरो है, उसमें हमारा सारा पुरुषार्थ उसमें ही फेरफार में लग रहा है, जबकि उसमें कुछ भी संभव नहीं है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म तो पृथ्वी के ढेले के समान है, पृथ्वी पिंड समाना, उदय में आ गया उसकी दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, एक समय का है, अगले समय तो खुद ही मर जाने वाला है, क्यों किसी ने गाली दी हमें, अब तुम कितनी पिटाई कर लेना उसकी बात निकल गई, वह तो निकल ही गई, क्यों समझ गया, वो प्रतिकूल संयोग हो गया, वो तो हो ही गया, वर्तमान में कुछ ज्यादा संभव है नहीं, ओके भविष्य में ना हो तो तुम्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे अड्डा बनाए हुए, क्यों देवी गौतम स्वामी अगले साल में अगले क्षण में समर्पित होकर के चरणों में आ जाएंगे, किसने कल्पना की थी? क्या तुम क्या चाहते हो, हम क्या बदलना चाहते हो? क्यों? और जो मस्करी अंदर बैठा था वो एक क्षण में जाकर बाहर चिल्लाने लगेगा कि इसने जा लिया है। क्यों नहीं? क्या पता इसका? जो मारीच वहां बैठा था उनके साथ दीक्षा लेने वाला, वो एक मिनट में जाके नई दुकान खोल लेगा, इसका क्या पता था? बोलिए आप क्या बदलेंगे, आप क्या बदलना चाहते हैं? संयोगों में कुछ नहीं बदल सकते, और उसके पता ही नहीं है ना आपको संयोग। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि बस ये भविष्य में वे ना हो, बस सिर्फ इतनी ही बात है, तो वो भी वास्तव में उदयाधीन है। अभी करुणा नियोग वाले आपको थोड़ा सा चक्कर में डालेंगे कि वो ऐसा संक्रमण हो जाता है, वो उत्कर्षण हो जाता है, वो अपकर्षण हो जाता है, आप समझे ना? लेकिन वो सब ये भगवान ने बताई जो क्रमबद्ध पर्याय है उसकी मर्यादा के भीतर ही है, बाहर नहीं होता कुछ भी। वो भी नक्की है उसमें ही होता है, जैसा नक्की है वैसा ही होता है। जहां हमारा कुछ नहीं चलता, ऐसा आता है गुरुदेव के भजन आता ना, पर में कुछ नहीं चलता, हमारा सारा विकल्प उसमें ही फेरफार करने की में चलता है। और जहां थोड़ा सा रास्ता अपने लिए खुला है कि वो मोहिनी कर्म के उदय से, दो तरह का मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी भी जाना कोई खतरनाक नहीं है, दर्शन मोहिनी के बाद तो वो एक जीरो जैसा हो जाता है। क्यों? मानो तो अनंत आनबंदी समझ लो चारित्र मोहिनी में, और मिथ्या इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। सारा द्वादशांग का उपदेश जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सिर्फ इसलिए है, इसमें भी भूतकाल के लिए कुछ नहीं है, वर्तमान के लिए भी कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर जाओ तो भविष्य में रागादि पैदा ही ना हो, इतना रास्ता यहां खुला भी है। क्योंकि डिग्री की डिग्री उदय के अनुसार कार्य हो ऐसा नहीं है, संयोग में डिग्री टू डिग्री है। अच्छा ये सब देव को तो पहले केवल ज्ञान में आ गया था ना, कि भरत तो बाहुबली कैसे लड़ेंगे, आ गया था कि नहीं आ गया था? तो कुछ कोशिश क्यों नहीं करी, बता देते तो, और लोग कोशिश करते थे, उन्हें नहीं करने थी तो क्यों? तो उसमें कुछ नो चेंज, कुछ संभव नहीं था। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, इसलिए वो अच्छे गए। एक प्रश्न छोटा सा पूछ लूं इसी के बीच में, गौतम स्वामी का जो उन्हें सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई, समझे ना, तो उनका देशना लब्धि प्राप्त करने में गुरु कौन था? मैंने ज्यादा खोल दिया, लेकिन इतना पूछा कि वास्तव में गौतम स्वामी का गुरु कौन था? सो अपने मन में ही सोचना, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए प्रश्न करता हूं, क्योंकि मैं वो बात बताना चाहता हूं। सब एकदम आता है, भगवान महावीर दुनिया जानती, भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य, तो नंबर एक पे बैठे हैं ना, क्यों? शिष्यों में। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ गृहीत मिथ्या दृष्टि से, तब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली ही नहीं थी। क्या दिव्य ध्वनि कब खिली? कि जब वे सम्यक दृष्टि हो गए, उनने मुनि व्रत ले लिया, उन्होंने आत्मा का ध्यान किया, द्वादशांग के पाठी हो गए, मन पर ज्ञान के धनी हो गए, और जब वे महावीर के समोषण में उपस्थित हुए, तब महावीर की दिव्य ध्वनि में से पहला वाक्य खिला। बोलो, इतना काम पहले हो गया है? अब भी गुरु किसे कहते हैं? गुरु अब तो उनके लिए सहयोगी हो गए ना, केवली विशुद्ध केवली। उसमें देखा है केवली विशुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है, है? उसमें अभी अभी मैं गाथा गुरुदेव की पढ़ रहा था, सुन रहा था गुरुदेव से ही सुन रहा था शायद सुबह 5 बजे की प्रचार में, केवली शुद्ध केवली में अंतर ही नहीं है ना, बहुत उनमें भेद करके गिनाया है। सुना है मैंने आज सुबह ही, ध्यान नहीं मुझे कहा, लेकिन वो सुना है कि शुद्ध केवली और केवली में अंतर ही नहीं है, नए पक्षातीत होने में क्यों तो समझ लो कि 143वीं गाथा में कि जैसे केवली भगवान नए पक्षातीत हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी नए पक्षातीत हैं, ऐसा बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो उनकी पर्यायगत योग्यता ही थी, वहां सामने कोई उपदेश देने वाला निमित्त तो था ही नहीं, तो हमने कह दिया मानस्तम्भ निमित्त है, उसके दर्शन निमित्त हो जाएंगे, जो होगा सामने उसको निमित्त घोषित कर देंगे। तो निमित्त के ज्यादा पराधीनता निमित्तों की नहीं रखना, अपनी पर्याय में कहकर योग्यता प्रकट होगी करोगे अपने दिशा में पुरुषार्थ। तो जैसे महावीर की पर्याय में आकाश से उतर के निमित्त आए थे, पहले आकाश से जरूरत ही नहीं बनी, वो मानव स्तंभ और उसमें भगवान जिनेन्द्र भगवान का जिन बिंब वो ही निमित्त बन गया। क्या कितना बढ़िया, ये निमित्त की निरर्थकता का उदाहरण है। प्रथम साल में लिखा है मेरी समझ में नहीं आता कि यह जीव निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा, ऐसा वाक्य है कि निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा। तो जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में सिर्फ इतना समझाया है कि वर्णादि और रागादि भाव का ये भगवान आत्मा ना इन रूप है, ना इनका स्वामी है, ना इनका कर्ता है और ना इनका भोक्ता है। 144 गाथा हो गई, अपने मैं पूरी भूमिका बता रहा हूं जो अपनी बात आगे शुरू करनी है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये ठीक कहा आपने, नहीं है मान लेते हैं हम, लेकिन अच्छे कर्म तो करना चाहिए ना, और बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हर उपदेश का अंतिम निष्कर्ष तो हम यही निकालते हैं ना, सब जगह कहीं भी जाओ किसी भी जगह, हम बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। क्यों वो कहते गजब हो गया, हम समझा रात भर ईसा और पारे में सकेला जैसा हो गया ना, रात भर रामायण सुनी और सुबह अम्मा जी पूछती पंडित जी एक बात तो बताओ कि राक्षस कौन था, राम के रावण। तो पंडित जी ने माथा सुन लिया कि मैं रात भर रामायण सुना रहा हूं, और ये कहती राक्षस कौन था राम के रावण, इसे इतना ही पता नहीं चला, कितनी स्थूल बुद्धि है, ऐसी बात नहीं हो गई है। देखे थे हम तो ये समझाते समझाते 75 गाथा लिख जाए कि आत्मा कर्ता नहीं है, न रागादि का न वर्णादि का, और ये कहते अच्छे भाव तो करें, अच्छे काम तो करें और बुरी नहीं करें, ऐसा तो होना ही चाहिए। अभी करें हम तो नहीं करता ही नहीं है, ये समझा रहे हम, ये करने वो नहीं करने की बात कहाँ आई, क्यों? लेकिन ऐसे भी लोग तो प्रश्न होते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया वो इतना मूर्खता का नहीं है प्रश्न, वो तो बहुत ओवर समझदारी का प्रश्न है। वो अम्मा कोई मूर्ख नहीं थी, वो तो बहुत समझदार थी। क्यों? क्योंकि जो पूरी रामायण उसने सुनी, उस रामायण में जितनी धोखाधड़ी रावण के पक्ष से नहीं हुई उससे ज्यादा राम के पक्ष से हुई है। सूर्पणखा की राम नाक, सीता की नाक नहीं कटी, रावण की बहन की नाक कट गई, 6 महीना उस पत्नी रावण के घर रही राम की, और उसकी इज्जत भी सुरक्षित रही, नाक तो है ही, नाक माने इज्जत भी होता है ना, क्यों? नाक माने इज्जत भी होता है, और ए भी होता है नाक माने, दो अर्थ होते ना नाक के, एक तीसरा अर्थ और होता है। बोलो कौन सा? इसके अंदर जो माल निकलता है उसका नाम भी नाक है। फिर माल का नाम क्या है? एक कवि की एक चार पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, क्या लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, हम भी कहते हैं कि बेशहर की नाक है पर छिनकी हुई। तो कुछ लोग जो ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि अच्छे काम तो करना चाहिए ना, शुभ भाव तो रखना ही चाहिए ना, उनके लिए पुण्य पाप अधिकार लेखा। पर पुण्य पाप अधिकार में दोनों ही कर्म और दोनों ही भाव करने लायक नहीं है। इतने ही नहीं है, इन दोनों का ही कर्ता आत्मा नहीं है, वो कर्ता कर्म अधिकार का ही परिशिष्ट है। कर्म दादा, हम उसमें ही उतर जाते हैं पूरे में, काय में भले ये बोले हैं ये बाप बने, दोनों को एक समान हो, दोनों को नहीं करने योग्य मानो, नहीं करने योग्य मानो। अरे नहीं करने की बात क्या चल रही हो तुम जी? ये तो करता है कि नहीं करता है इसका निर्णय चल रहा है। अभी हमारी डिसीजन तो ये करना है हमें, क्यों रागादि भावों का आत्मा करता है कि नहीं करता है, और शरीर की शुभ क्रियाओं का आत्मा करता है कि नहीं करता है सुबह सुबह का। और निर्णय तो ये किया हमने 144 गाथा तक कि करता नहीं है। अब फिर इसमें दोनों ही नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना में करना तो आ गया ना, फिर तुम कर सकते हो और करना नहीं चाहिए, और आज तक तुमने किया है। वो तो कहते तुमने आज तक किया ही नहीं। भगवान आत्मा जिसकी तुम हो, जो तुम भगवान आत्मा हो, जो सर्वविशुद्ध ज्ञान तुम हो, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान ने कुछ किया ही नहीं है आज तक, न संयोगों का न संयोगी भावों का, न शुभाशुभ कर्मों का न शुभाशुभ भावों का। बात तो ये चल रही, अब उसमें दो में से किसका कोई का भी करता ये आत्मा नहीं है। यदि हम ये चीज भूल गए तो समझ लो कि हाँ समय सार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? अब जो अपने आश्रम भाव की बात चलनी है, आश्रवादी का आरम्भ शुरू कर रहे हैं, तो इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जीवाजीवाधिकार में जीव और अजीव मिलकर के एक भेष बना के आए थे, एक कर्तव का। कर्ता कर्म अधिकार में जीव कर्ता और रागादि कर्म, ऐसा कर्ता कर्म का भेष बना के आए थे। अब इन दोनों में एक बना के आए थे और हमने इन्हें जुदा जाना, ये एक नहीं है और कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ये जाना, ये ज्ञान हुआ वहां। अब पुण्य पाप में वे कोई एक भेद बना के नहीं आए, आप समझिए ना। वो कहते एक आदमी एक था और उसने दो भेष बनाए थे, कर्म एक था और उसने पुण्य पाप दो भेष बनाए थे, और यहां पर ये दोनों अलग अलग, अलग नहीं है, एक ही आदमी है। ऐसा ज्ञान हमें हुआ तब वो भागा निकल के, क्या जैसे कि मोनो एक्टिंग में होता है, मोनो एक्टिंग समझते हैं आप, एक पात्री नाटक। एक पात्री नाटक माने एक ही आदमी स्टेज पर बोलता है और दो आदमी का पाठ वही करता है, दो का अनेक का। ये खासकर आकाशवाणी का कार्यक्रम है, इसका नहीं, टीवी का नहीं है, दूरदर्शन का नहीं है, आकाशवाणी का। क्या मतलब? कि वो आकाशवाणी पर एक ही आदमी और पति पत्नी दोनों का संवाद करता है, और वही फिर पत्नी की भाषा में बोलने लगता है और पति की में, लेकिन वो अपनी आवाज को इस तरह से मोल्ड देता है कि आपको लगता है कि किसी महिला की आवाज है। तोता एक है, लेकिन बहुत से लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेज पर तो जब वो बोलेगा तो आपको दिख ही जाएगा एक है, वो ही बोल रहा है। तो इसलिए मैं आकाशवाणी का उदाहरण दे रहा हूं कि आकाशवाणी पर जब वो इस तरह का एक पात्री नाटक चलता है तो उसमें लोगों को भ्रम ही हो जाता है कि दो आदमी थे, एक महिला थी और एक पुरुष था। मैंने इतना वो महिला की आवाज निकालने में चतुर होता है, तो महिला होती है तो पुरुष की आवाज निकालने में इतनी चतुर होती है। ऐसा हुआ है पुण्य पाप अधिकार में क्या? यहां कहते हैं कि दोनों ही दो भेद बना के आए थे, एक कर्म मोनो एक्टिंग जैसा, अब इसमें से दोनों एक ही है ऐसा करके निकल गया। असलियत में क्या है कि हमारे हृदय में जो एक कमजोरी घुसी हुई है सब लोगों के हृदय में, पुण्य कर्म के प्रति थोड़ा सद्भाव तो है। अभी पूरी निर्दयता से निषेध करें तो अपने यहां बैठे लोगों में भी बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा निकलेगा कि वो आकर के मुझे वहां जाके घर पे समझाएगा क्या कहते हो आप, फिर भी ये फर्क तो है ही, ऐसा तो आप नहीं, पूजा पाठ को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, प्रजन को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, वो एक है ना, है तो बात अलग है, कहना बात अलग है, सभा में कहना अलग है, अकेले में कह दो, तेरे से अकेले में कह नहीं, समस्या तो तेरी है, कोई दूसरा तो कोई आया ही नहीं है? क्या यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां भी पुण्य के पक्षपाती कम नहीं बैठे हैं। अब मैं कोई पूरे तो इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मैं अपमान नहीं करना चाहता हूं उस महिला के समान, कि महिला एक बेचारी थी, विधवा थी, कोई ने बहुत परेशान किया हो, पंच भी सुनते नहीं थे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जा, ये कोई कान पर जू नहीं रेंगती है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, इसमें मैं एक पंच आया क्या बग रही है कि आपके बारे में थोड़ी कह रही है, आपको छोड़कर बाकी के बारे में क्या, दूसरा पंच आया तो आपको छोड़कर क्यों, तो कुछ लोगों को तो छोड़े जिससे हम एक कह सकें भैया तुम्हारे लिए नहीं कहा। हम अंदर में झांक झांक करके देखें अपने में तो चोर पकड़ा जाएगा कि सचमुच हमने पुण्य, देखो इसमें बनासी दास का छंद पड़ता, आप किताब निकालो ना, ये कौन सा पेज निकाला, पहले पेज निकालो, समय आश्रवाधिकार कौन, पहले नंबर पेज है, हाँ पहला नंबर पेज है, पाप पुण्य की एकता बरनी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। बनारसी दास का छंद है कि मैंने पुण्य पाप की एकता, पुण्य पाप जुदे जुदे है नहीं, पुण्य पाप एक ही है, एक ही है, और उनका कर्ता आत्मा नहीं है, उनका भोक्ता आत्मा नहीं है, मैंने ये समझाया है, ये करो ये नहीं करो ये नहीं समझाया है कि दोनों ही नहीं करो। हम क्या समझते हैं आध्यात्मिक लोग, कि हमने दोनों ही को नहीं करो ऐसा समझ लिया तो हमने सत्य समझ लिया। क्यों शांति जी, ये क्या समझाना चाहते हैं, तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, तुम कर सकते ही नहीं हो। गुरुदेव का एक प्रवचन सुनना, उसमें ऐसा बोला है कि जैसा स्वभाव कल तुम्हें हुआ था अब ऐसा आज करके बता दो, क्यों नहीं होगा, आप रिपीट नहीं कर सकते, एक एक क्षण में भाव बदलते हैं। कोई अच्छा मार्मिक अपील करी तो बोल जाएंगे मेरे 10 लाख लिख लो, लिख दिया, फिर कोई आदमी दूसरे 10 लाख बोले ही नहीं, कोई ने 5 भी नहीं बोले, फिर 1 पे उतर आए, फिर लोग 10,000 पे उतर आए, क्यों, जो हुआ सो हुआ, अब उसका भाव वहीं गिर जाता है। अरे इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं 125,000 बोलता तो अभी सब पे टॉप पे रहता। खैर कोई बात नहीं, दूंगा तो मैं दूंगा तो मैं ही, क्यों बदल गया, वही पाप बन गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब जो जवान निकलेगी वो निकलेगी, ऐसी बात तो है नहीं, बल्कि कमी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। फिर एकदम चढ़ गया। ठीक है, हम तुम बहुत जल्दी करते हैं, पहला घर पे जाओ तो पत्नी कहती तुमने बहुत जल्दी करते हो, बच्चे कहने लगते हैं, तो बच्चे पत्नी कहानू कितने कितने कितना कितना चक्कर है, है? और जब तक वो पैसा निकलना जाएगी बात नहीं, निकल जाने के बाद में भी पछतावा तो चालू रह सकता है ना, क्यों पछतावा तो उसके बाद चालू रह ही सकता है ना, कि लुट गए लुट गए लुट गए, क्या लुट गए, किसने लुट गए, कैसा लुट गए, क्या हो गया है। इस संयोग से जहाँ जिसको जो लगना है वो होने वाला है, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, समझ में आया ना, समझ में नहीं आता काय जितना तत्व समझो। देखो अब क्या कहते हैं, ये आश्रव अधिकार में क्या समझाने वाले हैं, देखो मेन चीज क्या समझाने वाले हैं, बाकी तो बहुत बातें आएंगी यहां भी, के भैया ये जो पुण्य पाप हैं ये आश्रव के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। क्या मन जिन जिन पुण्य पाप का तू कर्ता भोगता नहीं है, वे पुण्य पाप के भाव आश्रव की पार्टी के हैं, और आश्रव दुख कारे घनेरे बोधी बनते तेने नेरे बेरे, के आश्रव घना दुख देने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अशुभाश्रव घना दुख देने वाले हैं, पूरे आश्रव भाव को लिया क्या नहीं लिखा, हम पढ़ते हैं खूब गा गा करके, महिलाएं बहुत पढ़ती हैं ना, बुद्धिवंत तने निर्भेरे, आश्रव भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, न आश्रव कर्म का करता है न आश्रव भाव का करता है। तो एक तरीके से जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की ही बात जो उसमें कही थी, चार चीजों का निषेध किया था ना, अब उसी को एक एक तत्व में घटित करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जीव अजीव दो तत्व तो निकल गए, तीसरा तत्व तो आश्रव ही है ना, तीसरा तत्व तो आश्रव ही है ना, और छाला में तो आया है ना, इनको तजिए, इसलिए कहते हैं कि ये आश्रव भाव ये यहां बताने वाले हैं। सबसे पहले मंगलाचरण का छंद है, कुंद कुंद ने तो कोई मंगलाचरण कहीं किया नहीं, हर अधिकार में मंगलाचरण करने की उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने कोई अधिकारों में बांट के बातें ही नहीं लिखी, उन्होंने तो 415 का था एक सलंग लिख दी, पर पहले मंगलाचरण कर दिया बंधुत्व शब्द सिद्धे, तो वही मंगलाचरण सब अधिकारों का है, वो बात अधिकारों में बांटते ही नहीं है। ये तो अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले इसे समय सार को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, और इसलिए फिर उन्होंने ये अधिकार बांटे, उनका बंटवारा उन्होंने किया। जयसेन ने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया, हमने चंद्राचार्य जैसा समर्थ आता है तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं, लेकिन जयसेन भी बहुत बहुत बुद्धिमान, जो एक लेखक में क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी उनमें बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। कौन सी होनी चाहिए दो क्वालिटी, एक विनय और दूसरा विवेक। ये मैंने आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है, क्या नाम है उस कहानी का, जो वो है ना आता है दर्शन की, कुछ नाम है उसमें, ये विनय और विवेक की मर्यादा मैंने बताई है, विनय भी किसी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए और विनय के व्यामोह में विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए। और इस बात की परीक्षा दर्शनाचार्य ने भूतबली पुरुष दंत की थी, इसलिए जान बूझ करके दो मंत्र एक एक में एक अक्षर बढ़ा के और एक अक्षर घटा के दिया था, और ये कह दिया था कि मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले जाना, क्यों मैं तो कल जाने वाला हूं, फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने विवेक से निर्णय करना। अब गुरु के दिए हुए मंत्र में संशोधन करना ये विनय की मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं है। भाई उनको अंदर से बहुत फीलिंग हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर भी उनने किया। और फिर सनाचार्य ने इसी क्वालिटी पर उन्हें अपना सारा तत्व ज्ञान सौंप दिया, और बाद में कह दिया तुम लिखने का भी अधिकार दे दिया कि तुम इसे लिपिबद्ध करो। विनय के उसमें विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए, और इतना वे भी नहीं होना चाहिए कि बस उसमें विनय ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी बात यहाँ पर वो एक कह रहे हैं क्या, कि जयसेनाचार्य ने जहां जहां उनको ये लगा कि भाई ये जो वर्गीकरण किया गया है इसमें थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो विनय का तो उन्होंने मर्यादा में पालन इसलिए किया कि प्रथम रूप से उस वर्गीकरण को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर लिखा कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो 320वीं का अध्याय है आपकी, और भी कई जगह उन्होंने वहां लिखा है मोक्ष अधिकार समाप्ता है ना, क्या पहले और फिर बाद में वो गाथा है ओनली, और अंत में फिर लिख दिया कि मोक्ष अधिकार यहां समाप्त होता है। जयसंघ ने समाप्त किया, अमृतसर ने समाप्त किया था वहां भी मान लिया, और फिर अपना भी अलग कह दिया। और 320वीं गाथा का जो गुरुदेव इतने उसमें लट्टू हुए थे और बहुत विस्तार से गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए, जिनकी अलग अलग किताबें भी छप सकती हैं, छपी भी हैं, वो वास्तव में सारा प्रकरण 320वीं गाथा की टीका का है ही नहीं, वो तो उन्होंने एक परिशिष्ट लिखा है, लेकिन बस भाग्य से वो उस गाथा के बाद वहां आ गया, क्योंकि लिख दिया उन्हें किंच विशेष है, क्योंकि कुछ विशेष है, और वो सारी बात पूरे 320 गाथा के सार पर लिखा है, क्योंकि 320वीं गाथा में जो वर्णन है वो उस वर्णन से उसका पूरा मेल ही नहीं खाता, वो तो कर्ता भोक्ता की गाथा, अभोक्ता अकर्ता की गाथा। तो इस तरीके से ये आश्रम अधिकार की चर्चा चलता है, उसका मंगलाचरण जो अमृतचंदाचार्य का है वो अपन पढ़ते हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अय मुदार गमीर महोदयो दुर्जय बोध धनुर्दया। ओके, नाटक के रूप में कहा ना, लिखा ना उनने, तो कहते हैं कि अब ये आश्रव भाव स्टेज पे आता है, लेकिन अत प्रवेशति आश्रवा, अब आश्रव प्रवेश करता है, यहां कोई भेष मेष नहीं लिखा उनने, न कोई कर्ता क्रम बनाया है कि न जीव मिल के आया ना अलग के आया। अब वो कहते हैं कि ये आश्रव भाव जिसने सारी दुनिया को जीत लिया अपने को, वो समझता है कि मैंने जीत लिया, इसलिए उसे बहुत घमंड हो गया। ऐसा मदोन्मत महामद से निर्भर युद्ध भूमि में समर है ना, समर रंग परागतम, बिल्कुल लड़ाई के मूड में, समर के रंग में बहुत अंदर से भीगा हुआ जो आश्रव भाव आया है उसको उदार और गंभीर जो ज्ञान रूपी धनुर्धर था उसने उस आश्रव भाव को वहां पर नाश कर दिया और ज्ञान का उदय हो गया। इसे ज्ञान को इन्होंने नमस्कार किया है। हर मंगलाचरण में अमृतचंद्र ने ज्ञान को ही नमस्कार किया, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया है। पर इतना फर्क है कि आश्रव अधिकार में आश्रव को पराजित करने वाली ज्ञान ज्योति, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का स्वरूप बताने वाली ज्ञान ज्योति, पर इतना उसका थोड़ा सा विशेषण बदल दिए हैं, लेकिन ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। इसका जो अपन ने पद्यानुवाद किया है वो पढ़ो भाई, कोई होशियार आदमी के ऊपर खड़ा होकर जरा अच्छा गला अच्छा हो वही पढ़ते पंडित, बहुत अच्छा मार्मिक है जी, आपको सबको एक एक अक्षर समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। में आपने सुन लिया, ख्याल में आ गया, पंडित बनारसी दास जी ने इससे भी ज्यादा मार्मिक शब्दों में इसका विवेचन किया है। और निमिचंद जी पाटनी उस पर बहुत रिझते थे, भैया खड़ा रह जा, और वो अपनी सभाओं में बहुत बोलते थे इस आश्रम भाव को, दीर्घ रस का परिपाक जैसा उसमें हुआ है ऐसा हमारे छंद में नहीं हुआ है, भाव तो सब आया ही है। बोलो भैया इसको जरा छंद ऐसा है, इसे चित्र काव्य बोलते हैं। चित्र काव्य जानते हैं आप? बैठ जाओ भैया। चित्र काव्य का मतलब यह है कि जिसका बहुत बढ़िया एक चित्र बनाया जा सके, इसमें भी बहुत बढ़िया एक चित्र बनाया जा सकता है। ये जो कालिदास का मेघदूत है, मंदाक्रांता में उत्तम चंद जी ने बताया था, मंदाक्रांता में लिखा गया है, वो पूरा ही मेघदूत चित्र काव्य है। और कई सब लोगों ने एक एक छंद पे चित्र बनाए हैं, और वो चित्रों के साथ प्रकाशित हुआ है। यानी एक छंद में ऐसा वर्णन है कि आपके दिमाग में एक चित्र ख्याल में आ जाएगा, और कवि ने उसे समझ के ला दिया, और आप कहेंगे हाँ मेरे को इसी का वर्णन किया है। जैसे लड़ाई में दो आदमी लड़ रहे हैं और लड़ करके ऐसा हुआ है, जैसा कैसा कैसा हुआ है, देखो आप थोड़ा सा मैं अर्थ आपको बताता हूँ, वैसे तो बहुत साफ है लेकिन 400 वर्ष पुरानी भाषा है ना, इसलिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। किताब तो आपके हाथ में है ना, तीसरा पेज देख के। जेते जगवासी, इस जगत में रहने वाले जितने भी स्थावर और जंगम मन तृष है ना, ये दोनों तरह के जीव हैं, उन सब जीवों को जिस आश्रम भाव ने अपने बस में कर लिया है, और सबका बल तोड़ के सबके बल को तोड़ दिया है, सब आश्रम के चक्कर में है। देखो जेते जगवासी जीव थावर तो जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोड़ के। स्पष्ट हो गया, महाअभिमानी, इसीलिए बहुत मान में आ गया कि मैंने सारी जगत को जीत लिया है। ऐसो आश्रव अगाध जोगा, ऐसा आश्रव है कि जिसकी युद्धा माने वीर, कि जिसकी वीरता की गहराई को नापा नहीं जा सकता। अगाध माने गहराई की, कुन अमाप गहराई है। ऐसे उसने रन रोपी रन थम्म ठाड़ो भयो मूछ मूर के। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जैसे जो अपने को विश्वविजय मानता था ना, तो ये वो खंभा खड़ा कर देता था, और फिर कहता था जिस माई के लाल ने ताकत हो तो इस खंभे को उखाड़ के बताए। उखाड़ के बताए माने खंभे में कोई दम नहीं है, माने खंभा को तू तब उखाड़ पाएगा जब पहले मेरे को जीतेगा। तुम उखाड़ने को आएगा तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, तो पहले मेरे को लड़े तो तू खंभे को टच कर सकता है ना। अंगद ने किया था ना, ब्राह्मण के सामने कोई खंभा तो था नहीं उसके पास, तो उसने अपना पैर खड़ा कर दिया खंभे में, कहते मेरे पैर को कोई उठा दे, है ना। और रामायण कभी वो बड़े बड़े योद्धा आए और उसके पैर को हटा नहीं पाए, मतलब एक प्रतीक माना जाता था। वो अश्वमेघ का घोड़ा होता था, उसे छोड़ते थे और कहता कोई इसको टोके, ये जाएगा जाए, जो कोई रोक दे से, रोक दे माने समझे ना, घोड़े को रोकने में क्या दम है, मतलब मेरे से लड़कर मुझे जीत लेगा तब घोड़े को रोक पाएगा, ऐसा खंबा। तो वो कहते अभी कि ऐसा वो अखाड़े में, ये अखाड़े में वो होते थे ना पहलवान लड़ते थे ना, तो वो कहते अखाड़ा में इसने रम को थोप कर विश्व जी ऐसा बताए कोई आग ऐसा करते ना, आप कभी देखा होगा हमने मल्ल युद्ध में, अखाड़े में कोई नया आता है पहलवान, उसका ऐसा हाथ करके वो जैफरी बताता है कोई आए इसके साथ लड़ने के लिए, कौन सा 90 किलोमीटर वाले में कोई है यहाँ के नहीं, आए 5 मिनट में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भारत केसरी राजस्थान केसरी की उपाधि दे दी जाएगी, ऐसा दृश्य समझ गए ना। अब वो चित्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अब आयो ती थान के अचानक परम धाम, अब उस वक्त वो खड़ा था अब मूछ मोड़ के, अब वो बनाएगा ऐसा आदमी आश्रम का भेद बनाए, खंबा सामने खड़ा हो मूछ मोड़ के कह रहा हो आजा माई का लाल को ही होता हूं, लिखा ना आयो ती रूप थनी थम में ठाणो भयो मूछ मोर के, वो तो समझता था कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। आयो ती थान के अचानक परम धाम ज्ञान नाम सुभट, ज्ञान नाम का योद्धा अचानक वहां आ गया, अच्छा मैं देखता हूं तेरे को। सवायो बल फोर के, उसका सवाई ताकत थी, स्फुराय फोर के माने स्फुरायमान होकर, सवायो बल फोर के आश्रव पछाड़ो लने थम्बे तोरी डार्यो, आश्रव को पछाड़ दिया और खम्बे को तोड़ कर, कई चित्र बन सकते हैं ना, पहले खम्बे वाला बूच वाला फिर पछाड़ा वाला, क्यों खम्बे को उखाड़ के फेंकने वाला, कितने चित्र बन सकते हैं, समझ गए ना। आश्रव पछाड़ो लने थम्बे तोरी डार्यो ताही निरख, ऐसा इसको देख के बनारसी दास उस ज्ञान को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। भैया एक बार और पढ़, अब लोगों की समझ में आएगा, एक बार और सुनो, बहुत मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक छंद है। इस तरह आश्रय भाव को एक ज्ञान नाम नाटक का दृश्य ना, पहला दृश्य, ये पहला दृश्य आया है आज के उस सीन में। अब कल से गाथाएं शुरू होंगी।